ये आकाशवाणी है। अब आप प्राची प्रिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये राशि 9,03,00,000 किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खाते में 3,00,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले कल श्री शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेंतोली के पास एक वाहन के खाई में गिरने से 13 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को हवाई मार्ग से ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया है और अन्य 7 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा मोचन बल की टुकड़ियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। G7 समूह के सदस्य देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने का वायदा किया है। कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की गई थी। साथ ही चीन की अनुचित व्यापार नीति से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को युद्धग्रस्त गजा में काम करने की अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज स्थित स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्री वर्साई म्यूजियम 2024 के लिए वैश्विक चयन में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्मृतिवन संग्रहालय वर्ष 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये गुजरात के लिए गर्व की बात है कि पहली बार भारत के किसी संग्रहालय को सांस्कृतिक और प्राकृतिक संरक्षण के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। नई संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परम्परा है। सरकार अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50,00,000 नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रख रही है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 25,00,000 लोग कार्यरत हैं और केंद्र सरकार की मंशा इसे दोगुना करने का है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में मात्रा अगले 5 वर्षों में दोगुनी होने की संभावना है, जो वर्तमान में लगभग $130 अरब है। मुंबई में आयोजित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण का आज शाम उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और फिल्म जगत के अभिनेता रणदीप हुड्डा, मधुर भंडारकर, सोनाली कुलकर्णी और दिव्या दत्ता उपस्थित हुए। उद्घाटन समारोह में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के विद्यार्थियों की लघु फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को इस वर्ष 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। वर्ष 2024 के लिए वनजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामथु को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होना था, लेकिन बारिश के कारण ये मैच बिना गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।